श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडितमानी नहीं थे, अर्थात आपने कुछ झुटमुट विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मान्यज्ञ थे, अर्थात इतने पंडित थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। क्योंकि ये इतने पंडित थे इसलिए वे अपने तथा कथित गुरु के आदेशों का उल्लंघन कर सके। उन्हें संसार से किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान विष्णु करते हो उसे किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उनका ऐश्वर्य भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी भ्रष्ट नहीं होता, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुतंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये आप लोग ने जो श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के ये बलि बामन प्रसंग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग आज ही आए हैं उनके लिए थोड़ा सा पूर्व प्रसंग भी बताना चाहिए कि भगवान बामन अवतार लेकर के और बलि के यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं और बलि के यज्ञशाला में सभी को अभिभूत करके और विशेष स्वागत भी स्वीकार कर चुके हैं। बलि अपने सारे परिकरों के साथ भगवान वामन देव को स्वागत किए, उनके पदधूत किए, उनके पैर धोया, जल को सर में धारण किए। ये सब करके फिर उनको पूछे कि मुझे लगता है कि आप जाचक मन कर आए हैं कुछ मांगने के लिए, तो बताए तो फिर बातचीत हुआ उनका। तो उन्होंने बोले हाँ मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो मांगने के बाद में फिर यही बात हुआ कि मैं मांगूंगा जब तुम एग्रीमेंट साइन करोगे। बलि महाराज और बाकी सारे जो उनके परिकर बैठे थे आश्चर्य हो गए, क्या बात भाई, अभी तक ना जाने कितने बड़े बड़ों को कितने कितने दान दिया, किसी ने मुझे, मैं जानते मैं त्रिलोकाधिपति हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ जो बोल रहा हूँ, और यज्ञ के समय तो मैं ऐसे उदार होता हूँ, तू छोटा सा बालक क्या चाहिए तुझे। नहीं फिर भी आप तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतोषी है, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण के सबसे बड़ा गुण है संतुष्टि, मैं बड़े संतुष्ट हूँ लेकिन मुझे जो चाहिए शायद अपना दे। तो भैया हम ऐसे ने काम नहीं करते, बिना पक्का साइन हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, एफिडेविट साइन हो जाए तब जाकर मैं करूँ। ओ सभी आश्चर्य होते, महाराज बलि को ऐसे बोलता है कि अब वादा करना पड़ेगा। तो भगवान जब देखे कि मान नहीं रहा है, अंततः बोले ठीक है, प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो गए। जब प्रतिज्ञा करने के लिए बाध्य कर दिया लड़का ने, बालक ने, तब रीति योग के जो श्रेष्ठ थे उनके गुरुवर आचार्य शुक्र थे, वो उठकर आया, चश्मा लगाकर देखे, बोले कौन है इतना भारी जिद्दी पकड़ रहा है, देख करके बलि खबरदार ये डुप्लीकेट है, नहीं ये है ब्राह्मण नहीं, ये तो मेकअप करके आया। हाँ छत्री कमंडल सब उठा करके लेकर आया, हे तो विष्णु है। तो सतर्क वाणी दिए और बहुत लंबा प्रवचन दिए, बोले जो बोल दिया अभी किया, अभी तक ये नहीं किया, जो पहले बोल दिया अभी संकल्प मत कर, एग्रीमेंट साइन मत कर, ये खतरनाक है, वो कुछ गड़बड़ करेगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत समझाए समझा कर, बोले सारे ऐश्वर्य ले जाएगा तुझे, बिल्कुल तरितलांत कर देगा, बहुत समझाए। और वैदिक उदाहरण दे, बोले अगर तो बोल ही दिया, अभी तो कुछ नहीं बोला, नहीं ओम बताया नहीं, ये सब नहीं किया तो इसलिए चलेगा, नहीं कर देने से कोई मतलब नहीं, तो बच जाएगा और कुछ नहीं। इतने सारे समझाने के बाद, सतर्कवाणी देने के बाद भी बलि महाराज ने गुरु जी को बोले, गुरु जी आप बोलते हैं कि विष्णु है, आपसे मैंने सुना हो विष्णु तो सर्वशक्तिमान है, हाँ है, मैं अभी भी कहता हूँ है ना, तो क्यों आए फिर भीख मांगने के लिए, नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता चलता, ये क्या नाटक है, अगर वो चाहे तो थप्पड़ मार के तो चले जा सकता है सारे, लेकिन ये भिखारी बनकर आया, कुछ तो है रहस्य, लेकिन जो भी हो भिखारी बनकर आया तुम मूर्ख मत बनो, खबरदार उसको मत दो कुछ। वो कितने समझाने पर भी बलि महाराज, अब आपने युक्ति से गुरु जी के बात को प्रत्याख्यान कर दिए, बोले कि नहीं, बोले जो वचन दिया हूं अगर आपके कहने पर सचमुच जो विष्णु है तो है, अगर मेरा सर्वस्व ले ले, मुझे अरेस्ट भी कर ले, मुझे मार डाले, कुछ भी करे, तो फिर भी मैंने वचन से मुकरेगा नहीं, मैं दूंगा। अगर विष्णु साक्षात को सर्वसमर्थ है, ले जा सकता है, लेकिन फिर भी आया है, मैं उनको देख करके मैं वचन पूरा करूंगा। तो इस प्रकार जब उन्होंने गुरु के बात को अमान्य करके और वामन देव को दान देने के लिए तैयार हो गए, गुरु जी कितने धमकी देने पर भी नहीं माने, तो गुरु जी ने गुस्सा हो करके उनको अभिसंपात करते हैं, साफ देते हैं। ये श्लोक शुक्राचार्य के द्वारा बोला गया है, ये सब शुक्राचार्य ने ये श्लोक बोले गुस्सा करके बलि महाराज को, ये श्लोक बोलते हैं शुक्राचार्य ने, दृढ़ पंडित मानज्ञ, तो बड़े ढीठ हो यार, मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं मान रहा है, हैं? अरे मैं तेरा गुरु नहीं, तेरे दादा परदादा किसी के प्रहलाद जी के पिताजी के गुरु जी था मैं, हाँ तू आजकल कितने जूनियर मेरे सामने, तू मेरी बात नहीं मान रहा, बड़ा ढीठ हो, तो बड़ा दृढ़ है, पंडित मान के अपने आपको बहुत पंडित मान रहा है तूने, बड़े विद्वान समझ रहा है, शब्द बड़े उद्धत हो, दुष्ट हो, और अस्मद उपेक्षा, मैं और मेरे साथ में पूरे परिकर है, उनके बेटे लोग जो थे यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर, वो भी सब थे, ये सारे मेरे पार्टी हैं, सबको बात नहीं मान रहा, जब मैं खुद बैठा हूं, मेरे स्टाफ हैं सब, किसी को नहीं अस्मद उपे हम लोग को किसी की बात नहीं मान रहा है, मत शासन अति को मेरे शासन से बाहर जा रहा है, इसीलिए तुझे मैं साफ देता हूं, तुम बहुत जल्दी अचिरात भ्रष्य से श्री सारे संपत्ति सबसे छूट जाएगा, भिखारी बन जाएगा, ऐसे साफ देते हैं। ये श्लोक शुक्राचार्य गुस्से में आकर के, आपने शिष्यों में सबसे रिच शिष्य तो हुई थे ना, हम राजा थे भाई, ऐसे शिष्य मिला तो बड़े, तो जो शुक्राचार्य तो अपने आपको मानते थे कि भाई मेरे हाथ में तो है कम से बलि और त्रिलोकाधिपति है, अब इतने बड़े आदमी उनको बहुत टाइम देते होंगे उन्होंने, लेकिन वो मान नहीं रहा बात, अब भरी सभा में अलग से प्राइवेटली बातचीत करते, ये नहीं पूरे सारे बैठे हैं, सभी परिकुरे के सामने, स्टाफ के सामने, सभा में, यज्ञ मंडप पर, और वो जातक भी खड़ा है जिनको देने के लिए मना कर रहे हैं, उनके सामने ही घटना हो रहा है, वो भी हंस रहा होगा, ठीक है समझाओ, चले के समझाओ। एक्चुअली घटना क्या है, इसमें पहले श्लोक में आया है कि शुक्राचार्य के मन में गुस्सा इतने आया, बोलते हैं कि ये भगवान है, रेगुलेटर तो उनके हाथ में है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, वो तो शुक्र के अंदर भी है, बलि के अंदर भी है, सबका अंदर ही है, सभी के अंदर बैठ करके रेगुलेटर कंट्रोल कर रहे हैं, किसको गुस्सा करा रहे हैं, किसको याद दिला रहे हैं, किसको क्या कर रहे, सब तो कर रहे हैं, और शुक्राचार्य कर्मकांडी पुरोहित हैं, शास्त्र वेद जानते हैं, बड़े पंडित हैं, ऐसा नहीं है, भगवान उनको बोलते हैं कवि नाम उसना कवि, उनकी विभूति हैं, लेकिन फिर भी इतने कर्मकांड में फंसे हुए हैं, वेद के जो असली तात्पर्य भूल करके इसी में फंसे हैं, पुष्पितावास में इसमें फंस चुके हैं। और इसलिए बताते हैं कि भाई ये दैहिक सुख है, ऐश्वर्य आदि सुख छिन जा गए, पहचान लिए। इतने तो उनके दिमाग है, इतने बुद्धिमान है कि विष्णु को जो कोई नहीं पहचान पाए वो पहचान लिए। इतने शार्प तो है शुक्राचार्य, है ना, पहचान लिए। पाचनकर बताते मैं ठीक पहचान रहा हूं, कोई गलती नहीं है, 100% विष्णु है ये, बाकी कोई नहीं पहचान सकते थे, लेकिन पहचान लिए। लेकिन फिर भी पहचान कर भी, अरे जो पहचान लिए साक्षात परमेश्वर भगवान है, तो उनको तो वही पूजा करके आरती करके सब कुछ दे देना चाहिए, उनकी संतुष्टि करना चाहिए, यही जीवन के लक्ष्य है, यही वेद की तात्पर्य है। लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंचे, कर्मकांडी व्यक्ति वो जाकर के उसी में लटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, असली वेद की तात्पर्य को जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वो आपने उनके ज्ञान के आधार पर बलि महाराज को समझा कि ये मैं समझ गया, जान गया, उसको मत दो किसी प्रकार से। लेकिन बलि महाराज जो खानदान से उनके शिष्य थे, और वो भी कोई डिवोटी नहीं थे अभी तक, क्योंकि इंद्र के साथ कई झगड़ा कर रहे थे, देवलोक को जबरदस्ती छीन लिए, कई मारपीट किए, ये सब किए हैं। लेकिन एक बात सोचने में आता है, जो बलि शुरू से देवताओं के साथ झगड़ा करना, यद्यपि भगवान देवताओं के सपोर्ट करते हैं, देवता और असुर में ही अंतर है कि देवता लोग परिस्थिति खराब पड़ने से भगवान के शरण में जाते हैं, और असुर लोग परिस्थिति खराब होने से अपने बल पर भरोसा करते हैं, भगवान के शरण नहीं जाते, उनके उल्टे हैं। बलि महाराज यही थे, अपने बलबूते पर करके ये सब कर रहे थे, देवताओं को आंटी थे, अपोजिशन पार्टी में थे, लेकिन फिर भी भगवान ने, परमेश्वर भगवान स्वयं उनको कोई बलि महाराज बुलाया नहीं था, नो इन्विटेशन। बाकी कई मान्यगण्य अतिथि को यज्ञ में इन्वाइट किया था, उनको इन्वाइट नहीं किया था, बिना इन्विटेशन में आपने आप घर से ड्रेसिंग पेंटिंग होकर के बटुक ब्रह्मचारी बन करके चले, सीधा यज्ञ मंडप पर आए, बिन बुलाए आए। जो भगवान किसी के घर में आते हैं बिना इन्विटेशन, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान किसके घर में आ जाए, उनके श्रीचरण किसका घर में आ जाए, कितने बड़ी सौभाग्य है। और जबरदस्ती बलि के सौभाग्य दी, और इतने सौभाग्य नहीं दे कि कल बलि मंडप पर आ जाए, यज्ञशाला पर आ जाए। आ करके आपने वोल्टेज इतने बढ़ा दिए कि सारे बोले कि अग्निदेव है कि सूरज है, कौन है ये बालक। शाम गायन करने लगे, सब खड़े हो गए। ऐसे वर्णन आता है कि जिस यज्ञ चल रहा था, वो ब्राह्मण जो मंत्र पाठ कर रहे थे, मंत्र उनका बंद हो गया आधा से ही, वो देखे रहिए सतभाग जो हवन दे रहे थे, वो भी सब स्थगित हो गए, खड़े हो गए आश्चर्य होकर के। इतने तेज था भगवान का, खड़े होकर के सब उठे उठे यज्ञ करता, स्वयं बलि उठकर आ गए, आकर के उनको वेलकम किए, पूजा किए। और जब पूजा किए, कोई साधारण पूजा नहीं, लिखा गया है कि बाकायदा उन्होंने परात मंगा करके बटु ब्रह्मचारी भगवान के चरण को धोए। ये भगवान को चरण के धोने का सौभाग्य अभी तक ब्रह्मा शंकर को नहीं मिला था, पहले बलि को मिला। बताओ, कोई देवता नहीं, डिवोटी की खता नहीं, लेकिन इतने बड़े सौभाग्य दिए उनको। अभी तो गंगा जी प्रकट नहीं हुआ था, गंगा जी के होने से पहले चरण धोवन जल बलि ने किया, वो खंटी होया, पूरा चरण धोया था। गंगा जी तो हम सुनते हैं एक अंगूठा के पानी डूब कर आया, एक अंगूठा के पानी के प्रभाव छूकर आया तो जुग जुग तक पतित पावनी पापनाशिनी बन गया। और जो वामन देव ने बकायदा अपने थाली में पानी डाल करके मकस करके धोया उनके पैर को, सारे पैर को पूरा, वो दस अंगुल के सहित पूरे तलवा एड़ी सब मिला करके बकायदा धोया, धोकर चरणामृत पिया और सर में डाला, तो कितनी पावरफुल गंगा होगा वो, जब एक अंगूठी के जल से इतने शक्तिशाली प्रभावशाली गंगा जी है, तो वो जल कितने शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए उनका बुद्धि सुधर गया, इमीडिएटली भगवान गए थे, बोले उनको ऑपरेशन कर दूंगा मैंने। चरण धोकर की बलि का पूरे दिमाग सुधर गया, अंतकरण सुधर गया, स्वभाव सुधर गया। भगवान की चरण दर्शन से हो जाता है, उनको चरण धो करके चरणामृत पेय सर में लगाए तो होना ही चाहिए, सुधर गया बुद्धि। अब कितने शुक्राचार्य पढ़ाई लिखाई थोड़ी मानेगा, तो अपने पहले से सीख लिया, इसलिए भगवान खड़े होकर बोलते थे कितना ट्रेनिंग दो, वो नहीं मानने में अब शरणागत किया तो कहां समझाएगा तुझे, अभी नहीं कुछ काम करेगा, सच कुछ काम नहीं किया। शुक्राचार्य ने खूब समझाने लगे बहुत प्रकार से, लेकिन जो चरणामृत पी चुका है, चरण स्पर्श कर चुका है, उसकी बुद्धि वो फेरने वाले खया नहीं, वो तो माने नहीं अंततः। तो यही कहा जाता है भगवान किसको अगर कृपा करना चाहते हैं वो अपने आप आए। कभी कभी तो सोच करके हम हैरान होते हैं, प्रहलाद महाराज उनके दादाजी बलि जी के, वो बचपन से, अभी हम वर्णन उनका पढ़ते हैं कितने सद्गुण था, और बचपन से जन्म होने से पहले नारद जी के लॉन्ग एसोसिएशन पाए, बड़े लंबा संघ प्राप्त किए देवर्षि नारद का, उनसे शिक्षा दीक्षा नारद से प्राप्त करके जन्म सिद्ध भक्ति, ऐसे सुखदेव हैं कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, उनको तो भगवान की ग्रह लग गया था उनके मन में, ऐसे ही नैसर्गिक की मति भगवान में था, इतने भक्त थे और बचपन से कितने कठोर तपस्या किए। आप सभी को पता है प्रहलाद महाराज जो बलि के दादाजी, दादाजी है ना दादाजी, तो उनको लाइफ रिस्क था, लाइफ रिस्क कहा गया, अगर तो हरे कृष्ण बोलेगा मार दिया जाएगा, और मारने के लिए हर प्रकार के प्रयास भी किया गया, ना जाने क्या क्या उपाय किया गया, इतने भारी तकलीफ उठाए, इतने भारी परेशानी कष्ट को उठा करके उन्होंने भगवान के दर्शन पाए, ऊपर बड़े विकटाल रूप को दर्शन किए, कोई हाथ से श्याम सुंदर का दर्शन नहीं, भयानक रूप दर्शन किए, वो भी आए आकर उन्होंने पिताजी को मर्डर किए उनके सामने, जो भी हो, तो इतने परेशानी, इतने साधन, इतने कठिनाई के बाद में भगवान को प्रसन्न कर पाए उनके दर्शन। लेकिन नहीं बलि, वो तो मैं मानता हूं कि जितने जैसे राजा थे वो जो शायद फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल मानते पालन करते होंगे, या जैसे बुल्डी घोटी का सब पालन करते होंगे कि नहीं डाउट, जब इतने झगड़ा झाटी में थे, मैनेजमेंट हेड थे, राजा थे, वो इंद्र के साथ हमेशा उनका दाव पेंच चल रहा था, ये सब नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी ये सब बिना कोई साधन भजन किए, ऐसा कोई बिना गुण होते हुए भगवान को बिन बुलाए, भगवान को फिर प्रार्थना करता होगा, कुछ नहीं किया था, आपने आप भगवान आते हैं, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि प्रहलाद महाराज को बचपन से ना जाने कितने कठिनाई सामना करना पड़ा, कितने भारी तप जप करना पड़ा, तब जाकर कहीं पिता को मार करके भगवान की दर्शन कर पाए। अरे ये कुछ भी नहीं, घर बैठे यज्ञ कर रहे, अपने घर में भगवान घुस करके उनको कृपा कर रहे हैं जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती घुस कृपा कर रहे हैं। बामनदेव जो गए थे बलि का जो स्पेशल यज्ञ भवन था, उसमें एंट्री पास भी होगा, जो वीआईपी पास वगैरह लेकर आए होंगे उनके, भगवान पास उठा नहीं, वो तो आईडी कार्ड नहीं बनाया था, इसी जन्म हो चले गए संस्कार लेकर के, लेकिन जाकर के इसने अपना पावर देखा है कि वो सिक्योरिटी बेचारे खड़े रह गए, सारे राजा आकर स्वयं उनको स्वागत करके ले गए, अब कौन चेक करेगा, सब वीआईपी गेस्ट की तरह उनको ट्रीटमेंट किए। अब जबरदस्ती घुस करके उनको अपने चरण स्पर्श कराए, चरण धुलाए, उनको कृपा करते हैं, इसे क्यों? तो आचार्य लोक ने कहीं उसको विचार करके कहते हैं, बलि के ऊपर ऐसे अहेतु की कृपा कोई उन्होंने सोचा भी नहीं था, इस कृपा का केवल कारण है, यद्यपि ये कभी सोच सकते हैं कि माता आदित्य को भगवान ने वचन दिए थे कि इंद्र को अपना घरबाड़ी वापस दूंगा ला करके, घरबाड़ी तो बलि के दखल में है, उसे कैसे लाएंगे, लाएंगे तो एक तो है युद्ध करके पराजित करके छीन करके लाए, लड़ाई उससे कर नहीं सकते हैं बलि से, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रहलाद के पौत्र है, और दान दक्षिणा भी करता है, और शुक्राचार्य की बड़ा सेवा करते हो, ब्राह्मण है, जो भक्तों की ब्राह्मण की पूजा वूजा करता है वो करता है, भगवान उसके सामने पंगा नहीं लेते हैं, बोले उनसे लड़ नहीं सकता, फिर अब कैसे मांग कर लाएंगे उनसे, तो मांग कर लाना एक ही उपाय बच गया, मांग कर लाना है, मांग कर लाने के लिए भाई मांगने वाला तो छोटे होते हैं, तो आपने साइज छोटा कर दिया, मेरे मांगने वाले ही बड़े हैं, देने वाले दाता, मैं तो ग्रहिता हूँ। तो ग्रहण करने के लिए, मांगने के लिए मांगने वाले छोटे बन करके गए थे। लेकिन आप बोलेंगे इसके लिए मांगने के लिए गए थे, लेकिन भगवान के पास कई उपाय है। भगवान को ऐसे मांगना जब नहीं था, किसी प्रकार से ले सकते थे। उनका पास तो अमाप अनंत काट है, कई बुद्धि से काम निकाल सकते हैं। लेकिन उन्हीं को स्पेशली आपने चरण स्पर्श करा करके चरण धवन जल को दिला कर इतनी महाकृपा करने के लिए, केवल चरण धवन जल सर बने चढ़ा, चरण ही चढ़ा देंगे उनके सर के ऊपर। हाँ, आगे आएगा बात। पहले तो पानी चढ़ाए चरण से, तो पैर ही चढ़ा देंगे उनके सर के ऊपर, आगे तो दबा देंगे उस बिलो स्वर्ग में। तो इतने महान कृपा भगवान जो कि उसका केवल ही केवल कारण है, क्योंकि ये प्रहलाद महाराज के नियर एंड डियर पोते थे। इसलिए भक्ति आचार्य जन कहते हैं, मतलब भक्ति में कोई सफलता प्राप्त करना चाहे, भक्ति करो तो होगा, लेकिन होगा अभ्यास करो वो करो, गारंटी नहीं कब होगा, कोई गारंटी नहीं कि कब हो जाएगा। साधन भजन खूब करो जम करके, कोई गारंटी नहीं। सिद्धिर भवति वा नेति संशयम अच्युत सेविना, भगवान अच्युत को जम करके सेवा करो नियम निष्ठा करके, लेकिन आपके सफलता प्राप्त होगा गारंटी नहीं है। शास्त्र कहते हैं सिद्धिर भवति, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि हो जाएगा। तुम खूब जम करके भगवान अच्युत की सेवा कर रहा है, नहीं होगा, अरे नहीं होगा। तो दूसरे लाइन में कहते हैं असम संत तद भक्ता परिचर्या रतात्मना, लेकिन जो उस अच्युत के भक्त के सेवा में उनके परिचर्या में लग गए, उनके सफलता में तो नो डाउट, संशय नहीं करना चाहिए, 100% होगा। ये शास्त्र का मतलब, ये भगवान के स्वभाव है। भगवान की कोई सेवा में जाओ, भगवान बोलो मेरे तू क्या सेवा करेगा मेरे कोई सेवा के मतलब ही नहीं, तू क्या मेरे टाइम क्यों खराब कर रहा है। तो इसलिए अगर हम कम समय को सही सही सफलता मार्ग में चलाना है, तो भगवान के पास टाइम ना खराब करके, भगवान के जो नीचे जन है उनके भी जो जन है, जितने नीचे आएंगे इतने पोटेंशियल बढ़ेगा। जितने पीढ़ी नीचे आएंगे, जो भगवान कहे उनके सेवा में लग जाओ, तो भगवान के पास नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, जबरदस्ती घर घुस कर कृपा करेंगे, उनको बुलाना जरूरत नहीं। बलि ने नहीं बुलाया था उनको, कुछ नहीं किया था, वो तो अपने यज्ञ में बिजी था, लेकिन जबरदस्ती घुसे उनके घर में, क्योंकि प्रहलाद महाराज के अति प्रिय पुत्र था। ठीक ऐसा ही उदाहरण हम और एक बार देखते हैं श्री चैतन्य लीला में। चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा के पात्र बने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। वो बहुत बड़े पंडित थे, जद्यपि बीमारवादी थे, लेकिन भगवान ने उनको एक हफ्ता में हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिए, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो बहुत बड़े भक्त बने भगवान के, वो भक्त बने भगवान के अति निकट प्रिय भक्त बने। लेकिन उनका जो जाई जमाई साहब थे, उनके बेटी का नाम था साठी, और साठी के जो हस्बैंड थे उनका नाम था अमोघ। उनका बचपन से इतने दुस्स्वभाव था कि बुरे लोग तो बुरे है ही है, जो अच्छे सदाचारी सदगुणी लोग हैं उन्हीं को कैसे भी ढूंढ ढांड कर उनका अपमान करना, उनके गलत निकाल करके उनको बदनाम करना, ये एक्सपर्टीज था उनका। वो करता था ढूंढ ढांड करके ही काम, बताओ अच्छे खासे लोगों का फॉल्ट फाइंडिंग करके उनको बदनाम करना अपमानित करना, ये ऐसा काम तो है ही नहीं। लेकिन इसको करते करते अब सार्वभौम का एक इकलौती बेटी था साठी और उनका हस्बैंड थे, लेकिन क्या करे, उनके प्रारब्ध क्या जैसे भी समझो, सार्वभौम का ज्वाई होकर भी इतने बड़े सार्वभौम पंडित, पुरी के तत्कालीन पूरे सबसे श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मंदिर हेड प्रीस्ट थे, इतने बड़े अधिकारी अब उसके बाद जगन्नाथ जी चरंती जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु के निकट पार्षद बन गए, लेकिन फिर भी इस उनके ज्वाई साहब का तो ऐसे ही सवाल कुछ नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रेम से भगवान के महिमा जो समझ गए, उनको घर में बुलाते थे, गृहस्थ हैं उनको प्रसाद के लिए बहुत रिक्वेस्ट करके भगवान कभी आते थे, लेकिन एक बार तो बोले नहीं आप हमेशा इन लोगों के साथ आते हैं, ठीक से खा नहीं पाते हैं, प्लीज एक बार आइए हम मन भर के खिलाएंगे आपको। तो पति पत्नी सार्वभौम उनको आए बाकायदा बनाए आइटम, उड़ीसा के प्रिपरेशन बनाए सब बना कर कई प्रकार के, इसमें वर्णन है सार्वभौम स्वयं कुकिंग कर रहे थे, वो भी कुकिंग अच्छा आता था उनको, जो साठीर माता मतलब उनको वाइफ वो असिस्टेंट रहे, वो हेल्पर थे, मेन कुक सार्वभौम, उन्हें खुद कुकिंग की। महाप्रभु टाइम दिए, महाप्रभु ठीक दोपहर में आ जाते हैं, दोपहर में आए प्रसाद पाने के लिए, और उनके घर में पूजित विग्रह थे भगवान के, सालग्राम आदि सब थे, रसिक शेखर विग्रह थे, आज भी है सार्वभौम के पूजित विग्रह। तो उनके सामने और एक पत्तल रखे, बोले वो डायरेक्ट भगवान को क्या खेले, साक्षात भगवान आ रहे हैं, पूरा पत्तल तुलसी पत्ता लगा करके लगाया, भगवान को बुलाए लाकर वहीं बैठा दी। बोले अरे ट्रांसफर तो करो ना, ट्रांसफर ट्रांसफर कुछ नहीं, बैठो इधर। अरे ये क्या है, भोग लगा रहा है ना, भोग आपको लगेगा। अरे ये क्या कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ, मेरे सामने और डुप्लीकेट नहीं, चले बैठो मुझे पता है ना, लेकिन इतने सारे मुझे ट्रांसफर करके दो, हमने कोई ट्रांसफर नहीं, सबको खाना पड़ेगा। बोले सार्वभौम में सन्यासी हूँ, ये उठवाओ देखो कुछ करो। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है, अब मुझे पहले नहीं पता था, अब तो मुझे अच्छी तरह से पता है, आप ही तो श्री मंदिर में जगन्नाथ आप ही है। अरे यहाँ कितनी बार खाते हैं भर भर करके, टनों टनों खा जाते हैं, ये कम से कम 10-5 किलो है, ये क्या फर्क पड़ता है आपको, मेरा घर में कोई ज्यादा है, 10-5 किलो का राइस बना है, उसके हिसाब से सब्जी वब्जी बना है, 50 आइटम बनाया था उनने। ऐसे बाध्य क्या महाप्रभु भक्तों के आग्रह मना नहीं कर पाए, बैठे बोले अब समझ लिया मेरे तत्व को क्या करूं, वो तो फूल खोल देगा फिर, अब मैं खा ही रहा हूं मंदिर में इतने सारे, तो यहाँ कोई नहीं खा लूंगा और क्या, बैठे अब भोजन शुरू कर रहे थे। भोजन जब कर रहे थे मुख्य पर तो सार्वभौम जी, साठी माता उनके पत्नी भी खड़ी थी, सार्वभौम जी खड़े थे, लेकिन सार्वभौम को लगा ये दोपहर के समय मेरा ज्वाई आता है डेली, अब इस समय आना जाए आना जाए करके बोला, आने से जानते ज्वाई के स्वभाव कैसा, उनके स्वभाव तो है दोस्त, जिसमें निर्दोष है उसमें दोष निकाल देगा, और भगवान भोजन कर रहे हैं और इतनी बड़ी स्वयं जबरदस्ती करके भोजन कर रहा है, इतने सारे आइटम इतने सारे, अगर उनके ज्वाई का नजर पड़ गया तब तो आज ही पूरी में हल्ला कर देगा, तो फिर एडवर्टाइज हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए उन्होंने जानता था, इसलिए एक लाठी हाथ में लेकर के आपने जो मेन गेट है दरवाजा बंद करके पीछे पीछे तरफ दरवाजा किया, पीठ की तरफ दरवाजा रखा, सामने भगवान के पत्तल को देख रहा था कि ठीक से खा रहे कि नहीं, कोई आइटम कमी पड़ रहा है तो पत्नी की बोलूंगा लाकर दो, देते रहो खड़े रहो, जो जो कम होता देते रहना, और स्वयं लाठी लेकर के दरवाजे पर खड़े है, दरवाजे की तरफ पीछे है गेट की तरफ, सामने महाप्रभु के पत्तल पर नजर कर रहे हैं। तो महाप्रभु खा रहे हैं, महाप्रभु बोले इधर क्यों खड़े हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं बताना चाह रहा था महाप्रभु तो अंतर्जमी, लेकिन फिर भी नहीं बताना चाह रहा था, वो जानता ही अपने ज्वाई का क्या स्वभाव, लेकिन वो खिला रहा था और खिला रहा था। इतने में देखा कि महाप्रभु खा रहे हैं कुछ एक आइटम उनके, महाप्रभु के साग बहुत प्रिय है तो खाने लिए कई वेरायटी का साग बना था, और खा रहे थे को पत्तल के ढोना था उसे कम हो गया, तो बोला ला कर दो, तो उनके पत्नी दौड़ कर गई जो गर्म साग था वो लेकर के आने के लिए, इतने में देखा कि दूसरे आइटम भी कम पड़ गया, दूसरे साग का साग, तो बोला वो भी लेकर आओ, लेकिन सुना नहीं पड़ रहा था, लेकिन चारों को संभाल नहीं पड़ा, तुम्हारा नहीं बोला अरे महाप्रभु के वो भी आइटम खत्म हो गया, और वो लेकर आएगा तब तक महाप्रभु बाहर उठना चाहे उनको खिलाना चाहिए, तो इसलिए कुछ सहन नहीं कर पाया कि ना उनको देना चाहिए जब तक उनको अखंड भोजन कराना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा देखा बोला कोई तो है ही नहीं, अभी आने में गया और आइटम देकर फिर आकर खड़ा हो जाऊंगा, जल्दी से लाठी के रख करके दौड़ करके गया, क्योंकि पत्नी दूसरे आइटम लाने गई है, तो इसलिए वो जाकर दूसरा आइटम लाकर जैसे जल्दी से और जो आइटम महाप्रभु ने लेकर के आकर के यहां घटना का वो बेचारा जल्दी से लेकर देना कि आपने पोस्ट पर आना चाह रहा था सिक्योरिटी में, लेकिन अमोघ को भी टाइम पर पहुंच चुका था। वो पहुंच करके दरवाजा के पास देख लिया था कि ससुर साहब खड़े हैं, फादर इन लॉ खड़े हैं, और समझ गया हाथ में लाठी भी है। बोला कुछ गड़बड़ है, वहां अभी एंट्री नहीं करना चाहिए, अब यहां खड़ा रहूं चांस मिलेगा तो जाऊंगा। अब खड़ा था, अब देखा लाठी रख करके पिताजी गए दौड़ करके। बोला अब चांस है तो चलो, दरवाजा खुला ही है, उसमें क्या है। वो भूल गए कि सिकड़ी देकर जाने के लिए, और खोल करके घुस गया, एक स्टेप अंदर लिया और सामने वहां पर भोजन कर रहे थे, नजर पड़ गया, देख लिया फोटोग्राफी दृष्टि उसका है। और इतने में सार्वभौम यहां से वो आइटम लेकर आकर महाप्रभु देने ही वाला था, वो देख लिया कि ज्वाई साहब खड़े। अब क्या करे, सार्वभौम शब्द बोले, ये क्या हो गया, ये तू कैसे प्रकट हो गया यार, अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन वो तो पिताजी को नहीं देख रहा था, वो तो देख रहा था इतने बड़े प्लेट, इतने सारे राइस और ये सारे आइटम, ये सब। बोला हाँ यार समझ गया, मैं तो सुना था बहुत सारे सन्यासी, यही सन्यासी का भोजन है। अब जैसे ही इतने सारे करके हाथ में करके आश्चर्य होकर बोला, ऐसे महाप्रभु उनको देख रहे हैं, वो महाप्रभु को देख रहे हैं, सार्वभौम देख रहा है कि वो मेरे से लेंगे क्या, तो उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। सार्वभौम इतने गुस्से में थर थर कांपने लगा, अब आइटम महाप्रभु क्या देगा वो देख लिया, महाप्रभु डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब आइटम को पतले छोड़ करके भागा, बोला तू बदमाश आकर तू उसमें जो चाह रहा था वही कर डाला। अब वो तो देखा कि पिताजी गुस्से हो रहे हैं, लाल पड़ चुके आ रहे हैं, तो तुरंत बैग गियर लिया और भागा, दरवाजा खोल करके। सार्वभौम आए लेकर पीछे दौड़े उसको, और भूल गए कि महाप्रभु बैठकर बसात पा रहे हैं, उनको भी थोड़ी और चर्चा करना है। नहीं, इतने क्रोधित हो गए कि बदमाश ला कर दोस्त देख लिया, और महाप्रभु खाएंगे नहीं, वो समझ गया, और नड़ी खाएंगे और उनका दोस्त देख, तो पीछे भागा लाठी लेकर के उनको गाली देते हुए। गाली जानते ना, उसकी आवाज में बोलते हैं वो गंदी गंदी बातें, तुम मर जा, ऐसे स्पष्ट बोल रहा था, तुम मर जा रे, आज मर जा, मेरे बेटी क्या हो जाए, विधवा हो जाए विधवा, आज ही हो जाए, लेकिन तुम मर जा। तो इतने आकर इसे कैसे गाली देते हुए लाठी उठाकर फेंका, लेकिन ये तो प्राण भय में जान वैसे भाग गया, बहुत दूर तो गया। बोला अरे ये तो भाग गया, पता नहीं अरे प्रभु का क्या होगा। तो फिर याद है वापस आया, गाली देते देते वापस आया, बहुत दुखी था। वापस आकर घर में देख रहा है महाप्रभु आचमन कर चुके हैं और नहीं खाए, यहीं पे पुलिस तक वहीं से उठ गए, आचमन कर चुके हैं। बोले सार्वभौम आपने आदर करके इतने खिला दिया, लेकिन देखा ना नहीं, आप कहीं स्वयं वो आकर कैसे बोलते, मैं जानता था इसी प्रकार भोजन करना मेरे लिए अच्छा नहीं। बोले अब लोग क्या कहेंगे, अब सार्वभौम तो इतने आपने को दुखी दोषी समझ रहा था, प्रणाम करके बोला माफ कर दीजिए, बदमाश ऐसा था, मैं क्या करूं, गलती हो गया, मेरे से दरवाजा छोड़ के चला गया। मैं बोला कोई बात नहीं, समझा कर वहां तो चल पड़े। चले गए और इधर सार्वभौम अंदर गए, पति पत्नी दोनों, सार्वभौम उनके पत्नी इतने दुखी हुए कि और खाना पीना छोड़ दिए, कि हम इतने आग्रह से भगवान को निमंत्रण किए थे, पूरी उत्साह से उमंग से बनाए थे कई आइटम उनको खिलाने के लिए, और महाप्रभु खा भी शुरू भी कर दिए थे, खाए रहे थे बड़े आग्रह से, आज तो पूरी भर के खाते, प्लेट साफ करते हम देते थे, लेकिन मेरा इतने दुर्भाग्य है, कहा कि मेरा ये ज्वाई आकर पकड़ो, क्यों मैंने इसको ज्वाई बनाया, इतने दुर्गुण दुस्वा आकर भगवान में भी इसे दोष देखा, क्या करूं, हाय रे मेरा दुर्भाग्य है। खूब आपने को कोसते हुए और उनके ज्वाई को गाली देते हुए दुखी होकर रोते हुए, अब खाए ने महाप्रभु के झूठन प्रसाद भी था और प्रसाद, दोनों ही पति पत्नी सर पीट कर रोने लगे। विनिद्र रजनी, सोए नहीं रात को, खाए नहीं, ऐसे बैठ करके उसको गाली देते देते रोते रहे। उस दिन बीत गया, रात बीत गया, दूसरे दिन आने लगा। दूसरे दिन दोपहर को उनके सार्वभौम के सिस्टर के शादी भी वहीं हुआ था, उनके जो जीजाजी थे गोपीनाथ आचार्य, वो भगवान के भक्त हैं, तो वो आए। वो आकर के देखे तो घर का हालत बुरी तरह है, सार्वभौम का दरवाजा खाली पड़ा है, दोनों पति पत्नी सूख चुके हैं, सारा दिन रात रोते रोते झूठा पतल पड़ा है, कोई खाए नहीं, कुछ नहीं किए, नहाए नहीं, इतने दुखी जाकर के बोले गोपनाथ भला क्या हो गया भाई साहब, अरे बोलो मत, इतने दुखी थे रोते रोते कुछ बोल भी नहीं पाए। वचन नयनम गर्दस्त्र धारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा, अब बोलने के लिए गला से वाणी निकलना है, आंसू निकलता रहता। गोपनाथ समझ गए ये महाप्रभु के उचिष्ट पत्र पड़ा हुआ है, ओ बदमाश आया होगा, वो भी जानते हैं ना उनने, उनके क्या होगा रिलेटिव में, गोपीनाथ का अमुख क्या लगेगा। अरे भैया समझ गए ना, गोपीनाथ कौन है, अमुख कौन है, गोपीनाथ है सार्वभौम के बहन के हस्बैंड और अमुख है उनके बेटी के हस्बैंड, अब दोनों का क्या संपर्क होगा। दामाद, अच्छा ब्रदर इन लॉ होगा, सन इन लॉ होगा, सन इन लॉ किसी होगा, ओ करेक्ट, अच्छा अच्छा सन इन लॉ, किसी ने मुझे एक बता रहा था लॉ के बारे में, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, लॉ माने कानून, कानून में सब ऐसे क्यों बनते हैं, कानूनी पिताजी, कानूनी माता, कानूनी भाई, कानूनी बेटा, सब कानून के हिसाब से भाई लॉ, ये हमारे सब विदेशी सभ्यता के देन है बोलते। लेकिन पत्नी को जिन कभी नहीं वाइफ इन लॉ कहेंगे, क्यों, क्योंकि वही लॉ है, इन्हीं के वजह से बाकी सब लॉ हुए। अगर वो ना होती तो फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कुछ नहीं होते, लॉ वही है, इन्हीं के वजह से लॉ लग गया सबके साथ में। तो गोपीनाथ समझ गए कि ये अमोघ आया होगा, बदमाशी क्या होगा, इसी वजह से दुखी है उन्होंने, तो समझा बोले समझने बड़े दुखी थे अवस्था में थे। तो गोपीनाथ आप क्या कहें, माने नहीं, बोले चलो जब आपको दुख मिट जाए, प्रणाम करके चल पड़े और महाप्रभु के पास गए। ज्यादा दूर नहीं था सार्वभौम के घर से, गंभीरा राधाकांत मठ थोड़े दूर है, राधाकांत मठ से भगवान अभी बैठे थे, अभी अपना मध्यान्ह भोजन में नहीं किए थे आज भी। गोपीनाथ आया, गोपीनाथ बोले प्रभु भोजन में नहीं, आप आते समय सार्वभौम के वहां गया था ना, वही वहीं से होकर आया ना, कैसे हैं सार्वभौम जी, ठीक ठाक हैं। अब गोपीनाथ चुप हो गए, बोले प्रभु पूछो मत, मैं जो देख कर आया मुझे भी दुख लग रहा, मैं जो देख कर आया उनके जो विचित्र जो बुरी दशा है, रो रहे पति पत्नी, ना सोए ना खाए ना कुछ भी नहीं किया, हाथ में यही थे झूठे पत्र पड़ा है आपका काल सुझवाए, इतने बुरी तरह से उन्हें घायल है, दुखी है, क्योंकि आपको तृप्त भोजन नहीं करा पाए इसलिए इतने दुखी है उन्होंने, दोनों पति पत्नी रो रहे मिनिद्र रजनी होकर के। महाप्रभु केवल इतना इन्फॉर्मेशन मिला, आपने भोजन नहीं किए, तुरंत उठो गोपीनाथ बट में थोड़ा आता हूं, चुपचाप उठ करके दरवाजे से बाहर निकले, कहां जा रहे हैं, बस मैं आता हूं, बाहर निकले गंभीरा मठ राधाकांत मठ से निकलेंगे, अरे 10 कदम से लेफ्ट साइड में सार्वभौम का घर पड़ेगा, कुछ सोचोगे सार्वभौम को समझाने के लिए जाएंगे, सार्वभौम घर में नहीं गए, पता था अभी खाली सार्वभौम घर दरवाजा खोला था, वहां नहीं गए, सार्वभौम के घर को क्रॉस करके आगे चले, उनको पता ही नहीं था अमुक का घर कहाँ है, वो जाके सिंह दरिया से लोग भीड़ को पता लगाए, बोले वो पंडित जी के जमात के घर कहाँ है, कौन से गली में है, कौन से कॉलोनी है, पता करके चलते चलते वहां गए, वो एड्रेस को पूछताछ करके जाकर अमोक के घर में पहुंचे। और इधर अमोक का क्या हुआ था, क्योंकि महाप्रभु के इतने अनुगत निकट पार्षद भगवान जगन्नाथ जी के हेड प्रीस्ट, उनके श्रीअंग सेवक सर्वम भट्टाचार्य महापंडित बड़े नियम सेवी, वो आपने हृदय से जिसको अभिशाप दे रहा है, इतने गाली देव पति पत्नी मिल करके, वो तो इमीडिएट एक्टिवेट हो चुका था, एक्टिवेट हो चुका था, अमोक यहां से भाग कर गया, जाकर के घर में बेड रिडिन हो चुका था, उनको भयानक बीसीसी का, बीसीसी जानते ना डिसेंट्री, वो डिसेंट्री मतलब ऐसे ऑर्डिनरी डिसेंट्री नहीं था, इसे भयानक डिसेंट्री हुआ था कि हर 2-3 मिनट में बाथरूम, सभी जमाने में अटैच बाथरूम भी था नहीं, और लोटा लेकर के बारिश पड़ी, ऐसे बुरी हाल था कि अब बाहर लोटा लेकर जाए या नहीं, वो तो बेड में ही बर्तन रख दिया गया, पानी निकल रहा था, पूरे डिहाइड्रेटेड बॉडी हो चुका था, पूरा कंप्लीट बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुका था, और उनके जो पत्नी सर्वों की बेटी साथी वो भी रो रही थी, और उनके घर वाले जो उनके पति ना उनके पिता माता जो भी और बंधु वर्ग सब रो रहे थे कि इस हालत में आ चुका था जो वैद्य कविराज बुलाए थे। वैद्य आकर बोलते थे ना बस सब गिनती में और आधा एक घंटा के और टाइम है, बस गोटी के मतलब हो ना सांस से मरने से पहले यही से भी आ चुका था स्थिति। अब मरे सब मरे, अब आशा छोड़कर रोध होकर के ये जो बना था ना मरने के बाद लेने के लिए जो क्या बोलते हैं सूर यार थी हाँ वो भी बनाने के लिए व्यवस्था कर रहे थे, बोला अभी मरेगा दोपहर ले जाए। इसी स्थिति पर आ चुका था पूरे घर में, सर्वों का घर में तो दोनों पति पत्नी ऐसे दुखद रो रहे हैं कि हाल खराब नहीं कर, उनका घर में गए तो वहां चिल्ला चिल्ला कर लोग रो रहे हैं। काल अच्छा खासा लड़का था, इतने जवान लड़का था, काली आशा था दोपहर में आज को मरने का नौबत, इतनी भयानक पूरी रात टॉयलेट जा जाकर सुबह तो अभी तो बिल्कुल कंप्लीट डिहाइड्रेटेड बचेगा नहीं, सब रो रहे। अब बताओ एक दिन में इतने हष्ट पुष्ट लड़का का इतनी बड़ी हो जाए तो कोई ना रोए, पूरे सारे रो रहे थे। इस समय में अपरिचित की पहचान नहीं वहां पर हुआ, रोज कभी गए नहीं थे वहां, वो पहुंच गए और जो देखा था सारों को घर में महाप्रभु को अमग, वो तो महासेंसलेस सब तो आंखें नहीं खुल रहा था, वो तो पड़ा है डेथ बॉडी में, डेड बॉडी की तरह। महाप्रभु अंदर घुस गए, यही अमग कहा है, सारे रो रहे थे। अपरिचित व्यक्ति घुस गए, एरी 7.5 फुट हाइट, बिल्कुल तप्त कांचन गौर वर्ण, सब आश्चर्य हुए कौन कहां से आए क्या बात है। अंदर चले गए जाकर सीधा अमुक जो डेड बड़ी पर पड़े थे, जो मृत्यु सज्जा पर पड़े थे, सीधा जाकर उनके सर में श्री हस्त कमल रख दिए, हाथ रख दिए उनके सर में, हाथ रख दिए। सारे पारिवारिक लोग बैठ करके रो रहे थे, आश्चर्य देख रहे थे, जैसे स्विच ऑन करने लाइट जल उठे कितने टाइम लगता है, स्विच ऑन का लाइट जलने में टाइम लगता है, तो भगवान में सर में हाथ रखे वो आ गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया मतलब पता नहीं बिना सालाइन में गिरा पूरा शरीर मजबूत, तुरंत स्पर्श करके ये भगवत शक्ति है, इमीडिएट इनपुट कर दिए सारे एनर्जी के अंदर, और वो तो तुरंत सही हो गया। वो आंख खुला देखा, देख करके आश्चर्य हो गया, बोला आप जिनके कारण मेरा ये दशा, आपको मैंने अपमानित किया, आप खा रहे थे इसका, आप आ गए। वो कुछ बोलने ना बोलने फिर तो भगवान ने बोलने लगे, बोले देखो तू ब्राह्मण शरीर है, ब्राह्मण कुल के पुत्र है तू, तेरे हृदय में ये दोष दृष्टि क्यों रखता है, ये चंडाल को क्यों पाल कर रखा है ब्राह्मण, ये सद्गुण रखो। भगवान ने सारे कहकर उनको उपदेश दिए, उपदेश देकर के सारे प्रेम इनपुट कर दिए उनको, केवल शिक्षा नहीं दिए, आपने श्रीहस्त कमल रख करके सीधा इतने उनको भक्ति प्रेम भक्ति दान दे दिए। उसी क्षण महाप्रभु आए, जंप करके बेड़े से उठा और उर्दबाव होकर नाचने लगा, हरे कृष्ण कह करके कृष्ण नाम लेकर के नाचने लगा, बिल्कुल दिव्य शरीर हो चुका था उसका। महाप्रभु वापस आए, वहां ज्यादा समय नहीं, उनको ठीक करके वापस आए, आ करके रास्ते में सार्वभौम के घर में गए, और सार्वभौम को तो पता नहीं था, जैसे सर्वों के पास जा रहे हैं वो तो अमोघ पीछे से नाचते नाचते दौड़ते दौड़ते उनके पीछे पीछे आया था कि प्रभु कैसे चले जाएंगे मुझे पुनर्जन्म दे करके, और दौड़ के जब सर्वों का घर में घुसे उनके पीछे पीछे अमोघ भी घुसा था, साठी भी घुसा था, इसे कमाल कर दिए। और सर्वों में देखा कि महाप्रभु आगे हटा था, तब प्रभु गुरु उठा था और उनके पीछे पीछे पूरे बेटी एंड दामाद और उनके परिवार सारे आए। वो देखा कि अच्छा खासा है, क्या बात है। बेटी आकर रो रो कर बोला पापा वो तो मर ही गए थे, मर चुके थे, लेकिन ये ठाकुर जी आकर के इसे कर दे, एक मिनट का काम है, सब बदला दी। उसको सुन करके सारा हम भगवान के चरण में पड़ा, ऐसा क्यों किए, ये महा अपराधी था, दूसरे जो अपराध कर रहा था ठीक था ठीक, अरे आप में दोष दृष्टि किया, आपको अपमानित किया, आपके चरण में अपराध किया, आप ऐसे अपराधी को जो जीवन भर बदमाशी किया है, अपराधी किया है कईयों का, और आपका आज ही काली अपराध आपका स्वयं किया, उसको जाकर बिन बुलाए अपरिचित उनके घर में घुस करके उनको क्यों ठीक कर, ठीक कर देना अलग बात है, अरे प्रेम दे देना, अरे हम लोग तो कितने सालों से झक मार रहे कुछ नहीं हो रहा है, अरे उनको बिना कुछ किए ऐसे अपराधी पापी, उनको बिना मांगे प्रेम दे दिए उनको, इसे क्यों। आश्चर्य होकर सार्वभौम जो भगवत चरण में पढ़ करके पूछा, तो भगवान बोले सार्वभौम ये तो तेरा दामाद है, उसका बात क्या कहें। तेरे घर में कोई कुत्ते बिल्ली भी हो ना, उसको मैंने बिना मांगे प्रेम दे सकता हूं। अमो के बात क्या कहें, कैसे? क्योंकि वो आपके हैं, बाकी कोई क्वालिफिकेशन में नहीं देखता हूं, एक ही क्वालिफिकेशन देखता हूं कि आपसे जुड़े हैं, आपके संपर्कित है, जागतिक। इसी वजह से इस समय ये जो मेरे भक्त का है इस प्रकार, तो उसको मैं कुछ नहीं देखूंगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, उसको उनके गुण योग्यता कुछ नहीं देखूंगा। तो ये भगवान के स्वभाव है, इसी स्वभाव के कारण आज बलि के घर में जबरदस्ती घुस के बिन बुलाए और जा करके उनको चरण धुलाए दो दोबारा, और एक बार चरण धुलाएंगे पति पत्नी, और दोबारा चरण धुलाए और चरण उनके सर में धरे, वो क्या क्या करे, मारे पीटे बांधे जो भी किए उसको किए, ये भगवान की जो अद्भुत कृपा है उसका तो वर्णन ही करना मुश्किल है। तो शुक्राचार्य बेचारा कर्मकांडी पंडित क्या समझे, तो गाली देने लगा। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वो जो गाली दिया, जितना अभिशाप दिया उसका सारे उल्टा हो गया। वो उनका मुंह से तो सांप निकल रहा था, वहां जाकर के वो वरदान हो गया। वो बोले तू पंडित मानता है अपने आप को, बोलते पंडित मानज्ञ, बोलते तो पंडित जो जो जिनको पूजा करते सब लोग मानते हैं कि बलि महाराज सारे पंडित के एक नंबर के, इस प्रकार अर्थ करते सारे पंडित उनको पूजा करते हैं, बड़े धूट गुरु जी का बात नहीं मानता, इन्हें करता। बोले कि ऐसे विद्वान पंडित है कि ऐसे साधारण थर्ड क्लास गुरु की बात नहीं मानता। ना ऐसे करके मानते हैं। तो जो जो ने अभी संपात किया था, गुस्से में जो बोला था, वो कुछ नहीं काम किया, सब उल्टा पुलटा होकर सब सीधा हो गया यहां जाकर। तो ऐसे स्थिति हम देखते हैं, इसमें यही श्लोक में शिक्षा प्राप्त होता है, अगर आपने डायरेक्ट गुरु अथॉरिटी अगर सही ना हो स्टैंडर्ड, अगर कितने अपने हृदय से गुस्सा होकर गाली दे, लेकिन अगर आप भगवत समर्पित हो तो सारे गाली गुलज अभिशाप सब उल्टा पुलटा होकर सीधा होकर ठीक हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, भले उनको समझ आए ना आवे लेकिन कोई फर्क नहीं। तो इसलिए जो भगवान के भक्ति में इस प्रकार समर्पित हो, और चालाकी करना है कोई भगवान के निजजन के पकड़ में रखो, उनके बन करके रहो, तब तो डेम के यार बिंदास के तरह रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गाली दे अभिशाप दे कोई अथॉरिटी कुछ भी करे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। अगर ये दो काम करते रहे, कोई भगवत भक्तों के संरक्षण में रहे, उनके बन करके रहे, और अब भगवान तो स्वयं आकर कृपा की, वो तो नहीं जानते नहीं थे। तो ये सबसे इतनी बड़ी शिक्षा है कि जो बलि महाराज के कैरेक्टर हम देखते हैं। हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की। तो जी कुछ बोलेंगे, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।